समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। हर सुबह एक नई शुरुआत की दस्तक होती है जो हमें प्रेरित करती है कि बीते कल की थकान को पीछे छोड़कर आज को पूरे उत्साह और विश्वास के साथ जिया जाए। इन्हीं उम्मीदों और नई ऊर्जा के साथ स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आज सवेरे में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज आज सवेरे एंड यस, मी एंड वैष्णवी, वी आर थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम। फर्स्ट देयर विल बी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, वील एक्सप्लोर मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन एंड व्हाई दिस डे इज स्पेशल, वील लेट यू नो अबाउट इट। टुडे इज 17th ऑफ अप्रैल एंड दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग यू दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज कमिंग योर वे, सो मेक श्योर दैट यू स्टिक अराउंड विद अस टिल द वेरी एंड ऑफ द प्रोग्राम। वी आर बिगिनिंग विद द हेडलाइंस। The Lok Sabha will resume discussion on the Constitution 131st Amendment Bill 2026, the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The three legislations are intended to increase the participation of women in the Lok Sabha and the assemblies of states and union territories. The Constitution 106th Amendment Act 2023, popularly known as Nari Shakti Vandan Adhiniyam, provided for the reservation of nearly one-third of seats for women in the Lok Sabha and the legislative assemblies. The objective of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam was to ensure greater participation of women in the democratic polity. These three bills have been brought to facilitate the delimitation of territorial constituencies and operationalize the provisions providing for the reservation of one-third of seats for women in the Lok Sabha and legislative assemblies. The Constitution 131st Amendment Bill 2026, introduced by Law Minister Arjun Ram Meghwal in the lower house yesterday, is intended to increase the number of seats in the Lok Sabha from 543 to 850. Out of 850 seats, 815 members will be elected from the states and 35 members from the Union Territories. The objective of the bill is to implement one-third reservation for women in the Lok Sabha as well as the assemblies of states and union territories. The Delimitation Bill 2026, introduced by Law Minister Arjun Ram Meghwal in the Lok Sabha, provides for the constitution of the Delimitation Commission to undertake the exercise of delimitation, facilitating the reservation of seats for women in the Lok Sabha and the legislative assemblies. Union Home Minister Amit Shah introduced the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha yesterday. The bill seeks to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The legislation provides for the readjustment of parliamentary and assembly constituencies by the Delimitation Commission. In his remarks during the discussion on these three bills in the Lok Sabha, Prime Minister Narendra Modi emphasized that 50% of the country's population should be made a part of decision-making process. He said, Nari Shakti is playing an instrumental role in the development of the country and this is the need of the hour to give them due representation in the policy-making.
विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सात अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
The Prime Minister appealed to the opposition parties not to give this historic legislation a political colour, as it will be beneficial for all and for the democracy of the country. In a brief intervention, Union Home Minister Amit Shah rejected the apprehensions of the opposition regarding reduction in number of Lok Sabha seats in southern states after delimitation exercise. He said, at present, out of 543 seats, the strength of southern states in the House is 129, which is approximately 23.76%, and as per the new strength of the Lok Sabha, the number of seats will go up to 195. Mr. Shah also said the government has not made any changes to the Delimitation Commission Act and the existing act has been repeated as it is. Leaders of various political parties took part in the deliberations. However, the discussion on the bills remained inconclusive. Union Home Minister Amit Shah will reply to the discussion today.
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र नौवहन और तत्काल सुरक्षा बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति जताई। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में और इसके बाहर शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए निकट सहयोग जारी रखने की भी पुष्टि की। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के प्रयासों पर चर्चा के लिए विश्व के नेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। इस सम्मेलन में लगभग 40 देशों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में जहाजों और चालक दल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के कार्यों का समर्थन करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
Celebrations broke out across Beirut as a 10-day ceasefire between Israel and Lebanon came into force with fireworks and celebratory gunfire lighting up the night sky. The ceasefire, which began last night, has temporarily halted hostilities and is aimed at creating space for diplomatic engagement. The announcement followed what U.S. President Donald Trump described as excellent conversations with Lebanese President Joseph Ayoun and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, both of whom, he said, agreed to the pause in order to pursue peace. Trump has also invited both leaders to the White House for the first meaningful talks between the two countries since 1983. The ceasefire grew out of direct negotiations that began on Tuesday, when the Lebanese and Israeli ambassadors to the United States held an in-person meeting in Washington, the first direct diplomatic contact between the two countries. Netanyahu confirmed he had agreed to the temporary ceasefire, but stressed that Israeli forces would remain in southern Lebanon, saying the country needed an expanded security zone to prevent attacks on Israel. More from our correspondent.
The 10-day window is being framed as a confidence-building measure. Trump has directed Vice President J.D. Vance, Secretary of State Marco Rubio, and Chairman of the Joint Chief of Staff to work with both sides towards a lasting peace. Lebanon is also seeking the withdrawal of Israeli forces, the release of Lebanese prisoners held in Israel, and the return of displaced civilians as part of any broader settlement. Hezbollah, the Iran-backed armed group at the center of this conflict, has been entirely excluded from the negotiations, and its position is on of outright rejection. Critically, Netanyahu has made clear that Israel will not withdraw from southern Lebanon, which remains a core demand of Hezbollah, and the group must be fully dismantled. That position represents a fundamental contradiction at the heart of any deal. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले समृद्ध यूरेनियम को सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि दोनों देश शांति समझौते के करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो तेल की कोई कमी नहीं होगी, होर्मुज जलडमरू मध्य खुले रहेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले सप्ताह पाकिस्तान में चली लंबी शांति वार्ता में अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके थे। अमेरिका का कहना था कि ईरान ने परमाणु ईंधन संवर्धन के अपने अधिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया।
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैज सेड दैट इंडियाज इकॉनमी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रेजिलिएंट इवन एज ग्लोबल ग्रोथ स्लोस अमिड वॉर ड्रिवन डिसरप्शंस। स्पीकिंग एट अ प्रेस ब्रीफिंग ड्यूरिंग द IMF स्प्रिंग मीटिंग्स, मिस जॉर्जीवा सेड country's strong fundamentals are helping it outperform most economies.
Most impressive development over the last decades has been the advancements in policies and institutions in emerging market economies. And yet we would see economies that have these strong fundamentals, have the dynamism, like India does, they would be performing better. Look at India today. India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. And that comes because of the strength of fundamentals.
On to sports now. In IPL cricket, Punjab Kings defeated Mumbai Indians by 7 wickets in the league match at Wankhede Stadium in Mumbai last night. Chasing 196 for victory, Punjab Kings overhauled the target with 7 wickets in hand and 21 balls to spare. Today, Gujarat Titans will take on Kolkata Knight Riders at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m.
श्रोताओं, अब रुक करते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से आपको मिलेगी ताजा हलचल और वे अहम खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में नए अत्याधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी तथा मौजूदा लैब्स को आधुनिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल दिल्ली के ITI में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करेगा। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ITI जहांगीरपुरी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये लैब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगी। वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार इस कड़ी में ITI हरिनगर में वेल्डर लैब का व्यापक आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा ITI मयूर विहार में एक नया EV लैब स्थापित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला किया है। इस नई बढ़ोतरी के साथ DTC बसों की कुल संख्या बढ़कर करीब 6,300 बसों तक पहुंच जाएगी। इनमें 4,538 इलेक्ट्रिक बसें और 1,759 CNG बसें शामिल है। एक रिपोर्ट।
सरकार ने बताया कि हरित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए दिल्ली और रोहतक के बीच एक नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू की जाएगी। सरकार ने कहा कि इस बस का रूट ISBT कश्मीरी गेट और पीरागढ़ी चौक से होकर गुजरेगा, जिसमें टिकरी बॉर्डर, बहादुरगढ़, रोहद, सांपला और रोहतक बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थान शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
नाउ वी विल फोकस ऑन चेन्नई। Tamil Nadu emerges as the top state this year in CBSE Class 10 results with a pass percentage of 99.92, improving on last year's figure of 99.86%. The nationwide pass percentage was 93.7%. Of the 1,11,603 students who appeared for the exams at 1,904 centres in the state, 1,904 centres, 1,11,509 students passed the exam, which is about 99.96%, passed the test. Another update will be from Shweshnavi.
जी शगुन, अब बढ़ते हैं मुंबई की ओर। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने पाया है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पड़ने वाली हीट वेव सिर्फ बाहर से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से नहीं बल्कि स्थानीय जमीन और मौसम की स्थितियों से ज्यादा प्रभावित होती है। अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया कि हाई प्रेशर सिस्टम और मिट्टी में नमी जैसी स्थानीय हीट वेव बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। मुंबई में एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे सुधार लागू किए हैं जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि निवेश प्रस्ताव तेजी से चालू उद्योगों में बदल सके। बैठक के दौरान श्याम स्टील और JW ग्रुप, ग्लोबल ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों ने राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए।
The door-to-door house listing exercise under National Census 2027 with Greater Bengaluru Authority has commenced yesterday. The Special Commissioner in the Revenue Division of the Authority, Munir Mudgil, has informed that house enumeration across the 5 city corporations of Bengaluru will be conducted till May 15th. So a total of 23,000 enumerators are signed for the exercise, with each enumerator responsible for approximately 200 houses. And this is the first phase of the census that involves house listing and enumeration, and the second phase of the census, this will begin in April next year. Another update, Vaishnavi, from Bengaluru. To manage increased passenger demand during the summer holidays, they're approaching us. Southwestern Railway will run 2 special train services between Bengaluru and Balurghat in West Bengal, and each train will have about 20 coaches, including AC 3-tier, sleeper class and general second class. Also in Bengaluru, several parts of Karnataka have been experiencing unusually high temperatures this April, with some areas in Kalaburagi district recording extreme highs of 44 to 45 degrees Celsius, like surpassing typical seasonal averages. The India Meteorological Department has issued orange and yellow heatwave alerts for Kalyan Karnataka region, warning of continued intense heat Although there is a possibility of isolated thunder showers in parts of Bengaluru, and these are expected to be limited and may not offer much relief, much respite from the prevailing hot conditions.
और शगुन अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर. जैसा कि देख ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है.
Exactly.
तो निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों की सुरक्षा व्यवस्था और मतदान के दिन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करेगा. पहले चरण की बैठक कल दोपहर 3 बजे आयोजित की गई थी, जिसमें 152 विधानसभा क्षेत्रों की तैयारियों की समीक्षा की गई. वहीं दूसरे चरण की बैठक आज होगी, जिसमें बाकी के 142 सीटों पर चर्चा की जाएगी. इन बैठकों की अध्यक्षता वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त मनीष गर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे.
वैष्णवी, नाउ वी विल टेल आवर लिसनर्स अबाउट हैदराबाद. तेलंगाना हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल 30% एनुअल ग्रोथ रेट इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स एज वेल. Telangana Industries Minister Dudela Sridhar Babu has urged a high-level delegation from the U.S. National War College to encourage American investments in the state's booming sectors. During a meeting at the Secretariat, the minister highlighted Telangana's strategic advantages, emphasizing its robust ease of doing business policies and its vision to become a global leader in drone systems, in cybersecurity, AI in defense and satellite communications. Minister Sridhar Babu noted that Hyderabad has been recognized by the Financial Times as the world's most cost-effective aerospace city and has secured the Best State for Aerospace award from the central government 5 times consecutively.
और अब बात आज के मौसम की. राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है. शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
इन चेन्नई इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री.
वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है.
बेंगलुरु इज अगेन इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई. मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्री.
और बात करें कोलकाता की, तो आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अगेन पार्टली क्लाउडी स्काई बट विथ हेज एंड द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस इन हैदराबाद.
शगुन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ें, इससे पहले मैं यहाँ पे एक बताना चाहूंगी कि आज एक 17 अप्रैल को एक खास दिन है.
Which is?
आज विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है.
Right, वैष्णवी.
हर वर्ष 17 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य लोगों में हीमोफीलिया नामक रक्त संबंधी बीमारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है.
So, Vaishnavi, every year, millions of people around the world live with a bleeding disorder that many have never heard of. Some people may have also heard of this. So, some go undiagnosed for years and they're unaware that their unexplained bruising, prolonged bleeding or painful joints point to a condition that has a name, which is, you are telling it rightly, hemophilia. So, World Hemophilia Day exists to change that, to raise awareness. This is a global observance, right? So it was established by World Federation of Hemophilia and serves as a call to action for governments, healthcare providers and communities to improve diagnosis, treatment and care for those who are affected. And the theme for this year, it is diagnosis, first step to care. And it places, Vaishnavi, it places the spotlight on one of the most pressing challenges in hemophilia management, the vast number of people who remain undiagnosed.
जी शगुन और श्रोताओं, ये तो थी आज के दिन की खासियत. अब रुक करते हैं बीते समय की ओर और जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज का दिन किन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है.
सो वी आर टेकिंग आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम इन द ईयर 1675. छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक द पोंडा फोर्ट एंड वन कारवर. इन 1945 गांधी जी इन अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंसुइंग सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस said that peace is impossible without equality and freedom of India, and then also demanded a just peace for Germany and Japan. In 1952 now, first Lok Sabha was formed. Ananta Shayanam Iyengar was elected as the first deputy speaker of Lok Sabha.
वहीं 1961 में क्यूबा में नेता फिदेल कास्त्रो की सरकार को हटाने के उद्देश्य से अमेरिका समर्थित प्रवासी लोगों ने बे ऑफ पिग्स नाम से एक सैन्य अभियान शुरू किया था जो अंततः असफल रहा। यह घटना शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाती है। 1964 में विश्व मेले के दौरान प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने मस्टैंग कार को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। ये मॉडल बाद में दुनिया के सबसे लोकप्रिय कारों में से एक बन गया और ऑटोमोबाइल उद्योग में एक नया दौर शुरू हुआ। वहीं 1970 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यान अपोलो 13 तकनीकी खराबी के बावजूद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौट आया। ये घटना अंतरिक्ष इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण और साहसिक मिशनों में से एक मानी जाती है।
एंड वैष्णवी, इन 1983 Rohini RSD-2 was placed in orbit and was used for conducting some remote sensing technology studies using a landmark sensor payload, remote sensing technology, and this was launched by the second developmental launch of SLV-3.
वहीं 2003 में लगभग 55 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच संसदीय सहयोग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत ब्रिटेन संसदीय मंच का गठन किया गया और 2008 में भारत और ब्राजील के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जो दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। और श्रोताओं, अब बात करते हैं उन प्रमुख व्यक्तित्वों की जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है। आज हम याद कर रहे हैं उड़िया भाषा और साहित्य को नई दिशा देने वाले महान कवि और साहित्यकार राधानाथ राय को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति, देशभक्ति और सामाजिक चेतना का सुंदर चित्रण किया जो और उड़िया साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में चिल्लिका, दरबार और महायात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वे एक कुशल प्रशासक भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार लाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
Well, today, listeners, we are also remembering Sarvepalli Radhakrishnan. Well, the philosopher president, as some say, who shaped modern India. He was not only one of India's greatest minds, but also a political leader, greatly influenced by his ideas, the philosophical and the ideological climate of the country. So a revered scholar and a master bridger of Eastern philosophies with Western ones, he was instrumental in forging the new India during the decolonization era.
शगुन, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के सम्मान में भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। उनके विचार आज भी शिक्षा और नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
एंड वैष्णवी, रीचिंग दिस इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट इज रिटन टू बी द बिगिनिंग एंड फॉरएवर परस्यूट। हिज डीप कमिटमेंट टू इंक्वायरी, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी, मार्क्ड हिज एकेडमिक लाइफ एज वेल।
Our constitution, which we adopted in 1950, embodies the quest for a more decent world, a better social order, a life for man, free from a sense of insecurity and the oppression of the spirit. It emphasizes the cardinal principles of justice, liberty, equality, and fraternity. It is a revolutionary document which gives our people reasons to hope for a better society and the means to win it. But this revolution has yet a long way to travel. To reach it, we should strive to become modern in outlook and dedicated to change. Ours is an open society based on free press, free speech, free association, and the rule of law.
Wow, so great to listen to him. And well, he also said a life of joy and happiness is possible only on the basis of knowledge and science. So here's a thought for our listeners.
और श्रगुन, आगे बढ़ते हैं।
yes.
तो पौराणिक कथाओं और भारतीय संस्कृति को आधुनिक भाषा और शैली में प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र कोहली की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य में एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और व्यास सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Today we are also remembering Benjamin Franklin, statesman, diplomat, writer, scientist and inventor, one of the most versatile and talented men and a leading figure, well, there at that particular time, especially after he was born. And after 18 months in London, he settled in Philadelphia, establishing himself as a printer as well. And he also, he bought the Pennsylvania Gazette, which he edited and which became American Colony's major newspapers. I was telling you about Benjamin Franklin.
अब हम बात करेंगे वीरता, नेतृत्व और देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध सैनिक तथा जयपुर राजघराने के महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान उन्होंने राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सफल अभियान चलाया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट नेतृत्व और दृढ़ निर्णय क्षमता का उदाहरण पेश करने वाली अग्रणी महिला प्रशासक वी एस रमादेवी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2013 में हुआ था। वे भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी और अपने कार्यकाल में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए।
लिसनर्स, टुडे वी आर आल्सो रिमेंबरिंग अ म्यूजिशियन। सो ऑन April 17, 1960, rock and roll lost one of its brightest young stars, Eddie Cochran. And well, he was only 29. And he has classics to his name like Summertime Blues, which you will listen to in just a few seconds. Come On Everybody and Three Steps to Heaven. So Eddie Cochran left a mark far greater than his short term time on earth. His voice, his energy, rebellious spirit helped define a generation and it still echoes today. Let's listen into his track Summertime Blues.
I'm a gonna raise a fuss, I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Such a beautiful upbeat track, right?
जी बिल्कुल। हास्य के साथ सामाजिक संदेश देने की अपनी अनोखी शैली से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले लोकप्रिय अभिनेता विवेक की आज पुण्यतिथि है। तमिल सिनेमा में उन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और अपनी सहज कॉमेडी के माध्यम से समाज से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वे केवल एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मलयालम साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले महान साहित्यकार तकाजी शिवशंकरा पिल्ले की आज जयंती है। वे मलयालम भाषा के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों में गिने जाते हैं और उनकी रचनाओं में समाज के आम लोगों के जीवन, संघर्ष और भावनाओं का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास चेम्मिन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में माना जाता है, जिस पर बाद में एक सफल फिल्म भी बनाई गई थी।
So today, listeners, we are also remembering another musician, Billy Fury. Well, one of the most important voices of rock and roll, he brought passion and from powerful live performances actually to introspective ballads, his music spoke to a generation and that rightly resonates today as well. Well, gone too soon but never forgotten. His voice, his look, his spirit, they will be forever part of rock and roll history. And we have a song especially which we picked for you today. This is Halfway to Paradise. Have a listen.
I want to be your lover, but your friend is all I stay. So far away.
और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
सो मी एंड वैष्णवी, मी शगुन चोपड़ा एंड वैष्णवी, वी विल वांट टू एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस दैट यू आर लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम एंड वी एक्सटेंड वेरी वार्म वेलकम अगेन एंड प्लीज कीप लिसनिंग टू मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। इट इज कमिंग नाउ एंड वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर यू ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।